धारण कर लिए, नहीं, उनका जो स्वरूप था वही भगवान का स्वरूप है। पार्षद भी वैकुंठ में भगवान के समान रहते हैं चतुर्भुज, तो उसी को कह रहे हैं पीतवासा चतुर्भुज। वासा का अर्थ वस्त्र, भगवान के समान पीताम्बर पहने थे, पहने अपने आप, यह भगवान की व्यवस्था है, कहीं से नया कपड़ा खरीद करके नहीं लाना पड़ा, स्वरूप में है पीताम्बर और चतुर्भुज, चार भुजाएं। तुरंत ये स्वरूप है जीव का, तो जब तक कर्म बंधन है, अविद्या है, तब तक स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है। भगवान के स्पर्श करने से पार्षद हो गए, और पार्षद हो गए तो हाथी का मरा हुआ शरीर वहां नहीं था, भगवान के छूने से गजेंद्र ही चतुर्भुज हो गए। यह एक अद्भुत कृपा है भगवान की। यदि गजेंद्र मर गए होते और सरोवर के तट पर लोग देखते कि सौ पड़ा हुआ है, तब तो यही हल्ला करते, तो भगवान रक्षा क्या किया, आखिर मर ही गया तो रक्षा क्या किया। इसलिए भगवान ने बहुत दूर की बात सोच ली है, इसको वास्तव में मुक्त करना है। ध्रुव महाराज भी ऐसे ही गए वैकुंठ में, उनका शरीर छूटा नहीं, वह शरीर ही चिन्मय हो गया। उनके सामने मृत्यु हाथ जोड़कर खड़ा था कि ठीक है आप जाइए वैकुंठ में, मना नहीं करता हूं, लेकिन हमको भगवान ने इस जगत का शासक बनाया है, इसलिए हमारी बात आप मानिए और ये शरीर छोड़कर जाइए। तो विमान थोड़ा ऊंचा था, ध्रुव महाराज ऐसे एक पत्थर पर खड़े थे, कहते हैं ठीक है खड़े रहो, तो वो नीचे खड़ा था तो उसका सिर सीढ़ी का काम कर रहा था, तो ध्रुव महाराज एक पर उसके सिर पर रखे और विमान पर चढ़ गए। काल के सिर पर पैर रखा ध्रुव महाराज ने, भागवत में बार बार यह बात आई, मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा आर रोह हरे पदम, मृत्यु के सिर पर पैर रख कर चढ़ गए। ये है शान भगवत भक्त की, भगवान जिसके फेवर में है वो काल क्या कर सकता है, क्योंकि काल स्वयं ही भगवत स्वरूप है, लेकिन ध्रुव महाराज के सामने कुछ नहीं कर सकता, हाथ जोड़ कर खड़ा था, ठीक आप जाइए वैकुंठ, लेकिन यहाँ का नियम पालन कीजिए, मतलब देहम त्यक्त्वा जाइए। ध्रुव महाराज देह त्यागने वाले नहीं, तो उनका देह ही पार्षद हो गया। आज तक कितने लोग मरे होंगे, लेकिन जमराज जी सबको ले जाकर नरक में पचाए चाहे स्वर्ग में भेजे, लेकिन कोई मृत्यु के सिर पर पैर दे दे, ऐसा तो ये कहीं इतिहास है। प्रकट ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर दे दिया। वैसे जितने भी भक्त हैं भगवान के धाम में जाते हैं तो मृत्यु को जीत करके ही जाते हैं, अब उन्हें मृत्यु अपने अधीन नहीं कर पाता है, बाद में उनकी मृत्यु नहीं होती है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सह अर्जुन। हे अर्जुन, वो मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है, पुनर्जन्म में नहीं आता है, मेरे पास आ जाता है। भगवान के पास जाने के बाद वहां मृत्यु नहीं है, उसको नहीं लौटना पड़ता। तो अब जितने भी भक्त हैं भगवान के धाम में जाते हैं तो वे भी मृत्यु को जीतते हैं, लेकिन ऐसे लगातार प्रकट दिखा देना मृत्यु के कपार पर लात मार करके और चला जाना, ये अद्भुत है। ध्रुव महाराज किसान है, उनको वीर भक्त कहा जाता है, घर छोड़े अमर्ष में भगवान को पा गए, अलकापुरी में चढ़ाई किए, जक्षों को मारे और मुक्त भी हुए उसी सैन के साथ। तो गजेंद्र भगवान का स्पर्श पाकर के चतुर्भुज रूप प्राप्त किए, पीताम्बर पहने थे, अज्ञान से मुक्त हो गए। उसे ये कौन थे जिज्ञासा हो रही है, तब गजेंद्र के पूर्व जन्म की बात कह रहे हैं। सवई पूर्वमभुद राजा पांड्यो द्रविण सत्तम इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण। ग्राह के लिए असव शब्द पर जो कर रहे हैं यह, और गजेंद्र के लिए वह, बहुत दूरी की बात बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी का ध्यान तत्काल चला गया साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, जब ये गजेंद्र जी इंद्रद्युम्न महाराज थे, वो ध्यान आ रहा है, इसलिए कह रहे हैं स हवाई। तो ये गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविण सप्तम पांड्य अभूत। द्रविण एक देश विशेष है दक्षिण में, तो द्रविणों में सबसे श्रेष्ठ थे, द्रविण देश के राजा थे, पांड्य देश के राजा थे द्रविण। इंद्रदुम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण, इनका नाम था इंद्रदुम्न। इतना महान तेजस्वी थे महाराज इंद्रदुम्न कि उनका नाम ही रखा गया था इंद्र के समान तेजस्वी। दिव का अर्थ होता है प्रकाश और द्युम्न का अर्थ होता है प्रकाशमान, से प्रद्युम्न, प्रकर्षण जो प्रकाशमान है उसको प्रद्युम्न कहते। तो महाराज की संज्ञा दी गई थी इंद्र द्युम्न, यह ऐसे ही बिना मतलब की संज्ञा नहीं थी, वास्तव में बहुत तेजस्वी थे, इंद्र के समान प्रताप था उनका, तेज था। तो बहुत विख्यात राजा हुए इंद्रदुम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण। और सबसे बड़ी विशेषता बता रहे हैं कि भगवान के भक्ति में लगे हुए थे, राजा होते हुए भी भगवान की भक्ति के परायण थे, भोगों में नहीं। राजा को तो भोगों की खूब सुविधा रहती है, भजन की कम संभावना रहती है, लेकिन ये राजा होते हुए भी केवल भगवान के भजन में लगे रहते। विष्णु व्रत परायण, परायण का अर्थ है इंक्लाइंड, जो भगवान के भजन पर ही पड़े हुए थे भगवान। और व्रत परायण, व्रत का अर्थ है भजन, जैसे श्रवण कीर्तन, भगवान की आरती करना और भी भगवान की नाना प्रकार की सेवा करना। भगवान विष्णु को ही अपने जीवन का सब कुछ समझते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे, अर्चना में लगे रहते थे, उसको कहते हैं विष्णु व्रत परायण। तो राजा होते हुए भी उन्होंने एक बार राज्य का भार अपने मंत्रियों को दे दिया और वे चले गए कुलाचल। कुलाचल महेंद्र पर्वत, इसको कहते हैं मलय पर्वत को, इसमें टीका में बात कही गई है कुलाचल। तो मलय पर्वत पर चले गए। स एकदा राधन काल आत्मवान गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरिम जटाधरस तापसया प्लुतोचितम समर्चयामास कुलाचलाश्रम। तो एक बार वे कुलाचलाश्रम, कुलाचल में मलय पर्वत में अपना आश्रम बनाए, कुटिया छोटी सी, और वहां जाकर के भगवान की आराधना कर रहे थे। एक समय भगवान के आराधना काल में वे कर रहे थे। उन्होंने व्रत लिया था भगवान की ऐसे पूजा करूंगा, ऐसे आराधना करूंगा। अरे वे आत्मवान थे, मन को पूर्ण वश में रखे थे। आत्मवान, आत्मा का अर्थ है मन और वान का अर्थ है वाला, मन वाला। और जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको बेमन वाला कहते हैं, बैठा है कहीं, मन चला गया है कहीं, मन उसके पास नहीं होता। लेकिन जिसका मन उसके कंट्रोल में होता है उसको आत्मवान कहते हैं। तो महाराज इंद्रदुम्न आत्मवान थे, मन पूरा बस में था, भगवान में लगा हुआ था। गृहित मौन व्रत, और मौन व्रत धारण किए थे। मौन व्रत का अर्थ है कि भगवान के गुण, भगवान के नाम के अलावा और कोई बात नहीं बोलूंगा। राजनीति में रहते समय बहुत बात बोलनी पड़ती है, ऐसे प्रजा का पालन होगा, इस राजा पर चढ़ाई करना है, ये करना है, कर वसूल करना है, लेकिन मौन व्रत धारण किए, भगवान के कीर्ति और नाम के अलावा और कुछ नहीं बोलना। गृहित मौन व्रत, और ईश्वरम हरिम, ईश्वर की सर्वाकर्षक भगवान की आराधना कर रहे थे। इतना दबचित थे कि वे राजा की जटाएं बन गई थी, जटा बन गई। जब आदमी केयर नहीं करेगा अपने शरीर को और तीन तीन बार चार चार बार स्नान करेगा तो जटा तो बन ही जाएगी। तो जटा धरा, जटाएं बन गई। बताए साधारण साधारण आदमी अपना कितना श्रृंगार करता है, और राजा जब भगवान के भजन में लगे तो भूल गए देह को, जटाएं बन गई, जटा धरा। तापस, तपस्या कर रहे थे, आपलू तो और जब देखिए तब लगता था कि देह भींगा हुआ है, मतलब बारंबार स्नान करते थे, इसका अर्थ त्रिकाल स्नान, बहुत स्नान करते थे। भगवान का भजन करने वाले को स्नान से नहीं डरना चाहिए, आप्लुत मतलब भींगे ही रहते थे, भगवान के लिए स्नान करते थे, अच्युतम समर्पय आमास, और भगवान की अर्चना कर रहे थे, पूजा करते थे। अब देखिए इस तरह से लगे थे अखंड भगवान के भजन में, परंतु एक कमी थी महाराज इंद्रद्युम्न में। कमी यह थी कि भगवान की भक्ति में तो लगे थे, लेकिन साधु महात्मा का उतना आदर नहीं करते थे। और कुछ यह भी भावना थी कि मैं भक्त हूं, मैं तो सब कुछ छोड़ करके भजन कर रहा हूं, तो यहाँ साधु सेवा करना और साधु की अवभगत करना अब हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मन में अहंकार था। लेकिन अहंकार होता है कुछ भी हो, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उसका कल्याण ही होता है। देखिए उसमें आए जब मलय पर्वत पर थे, तो मलय पर्वत पर भगवान अगस्त मुनि रहते हैं, उनका प्रसिद्ध निवास स्थान है। जद्रीक्षया तत्र महाजसा मुनि समागम शिष्य गणे परिश्रित। अगस्त जी ने सुना कि महाराज इंद्रद्युम्न भगवान का भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं इसी पर्वत पर कहीं, तो एक बार अपने शिष्यों के साथ उनसे मिलने के लिए आया। शिष्य ही परिश्रित, परितश्रित, चारों ओर शिष्य थे, हजारों हजार शिष्य, 10,000 शिष्य लेकर के चलते थे दुर्वासा जी। पहले के लोग कहीं किसी महात्मा का सत्संग करने जाते थे तो शिष्यों के साथ जाते थे, ऐसे लिखा है भागवत में, भगवान रेणुका सुत परशुराम जी शिष्यों के साथ गंगा जी के तट पर गए थे सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनने के लिए। और कई ऋषियों का वर्णन है, शिष्य शिष्यों के साथ, कुछ सपुत्र पुत्रों के साथ जा रहे, पुत्र भी शिष्य ही माना गया है, तो इस तरह से जाते थे। यह बात है कि वे लोग हल्ला करने वाले बच्चों के और स्त्रियों के साथ नहीं जाते कभी। यहाँ तो शांति है कथा में, लेकिन हम देखे हैं भारत में कभी कभी यज्ञ में स्त्रियां जुटती हैं, तो उनको वही टाइम मिलता है प्रवचन के समय बात करने का, क्योंकि आपस में कभी मेल होता नहीं, उसी समय फ्री टाइम मिलता है, तो कोई केयर नहीं होता है कि कोई बोल रहा है, आपस में बातचीत होती रहती है। तो शिष्यों के साथ पुत्रों के साथ जाते हैं। तो अगस्त जी वास्तव में आए यह जानकर के भगवान की भक्ति में रचे पचे हैं, हमारे देश के राजा हैं, तो बहुत श्रद्धा उनके उत्पन्न है, चले मिले कैसे करते हैं। जद्रिच्छया पहले से उन्होंने सूचना नहीं दिया, अर्थात जद्रिच्छया का अर्थ है कि घूमते घामते चले गए, या जद्रिच्छया का अर्थ है कुछ लेने के लिए नहीं, ऐसे ही चले महात्मा का संग करेंगे साधु। अब इतने तपस्वी दीर्घजीवी अगस्त जी कितने नम्र हैं कि महाराज इंद्रद्युम्न का दर्शन करने जा रहे हैं, ये ब्रह्मर्षि पर एक क्षत्रिय का दर्शन करने जा रहे हैं, यह जान करके भगवान के भक्त महाजसा मुनि, महाजसस्वी मुनि गए। महाजसा का यह अर्थ है महान भगवत भक्त। अजामिल प्रसंग को जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा तो अंत में वे कहते हैं कि यह हमने अगस्त जी के मुख से सुना है, और अगस्त जी अपने ड्यूटी अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे तो चरण छू छू कर कहते थे कि यह सत्य इतिहास है, मैं भगवान का चरण छू रहा, ऐसा कहे हैं वे, भगवान का चरण छू करके कहे थे अगस्त सुखदेव गोस्वामी से और ऋषियों से। तो वे भगवान के कथा के परम धनी है, उनके पास शिव जी भी जाते हैं। एक बार त्रेता जुगमा ही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। तो अगस्त जी जगदीश्वर जानकर भगवान शिव को पूजे, कथा सुनने के लिए भगवान शिव गए थे। कैलाश से कहाँ कहाँ गए थे कथा सुनने। ये बहुत पहले से परंपरा है, घर द्वार छोड़ करके कथा सुननी चाहिए। और अपनी पत्नी के साथ गए थे शिव जी, तो संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो अगस्त जी महाजशस्वी हैं, यहाँ जस शब्द का अर्थ भक्ति, महान भगवत भक्त, परम भागवत। तो गए शिष्यों के साथ गए, तम वीक्ष्य, तो महाराज इंद्रदुम्न ने देखा, इतने जशस्वी ऋषि आए हैं, तो उनके आने पर तुष्णिम अकृत अर्हणादिकम, वे बिल्कुल चुप ही रह गए। उनके पास समय था कि वे कह सकते थे, प्रणाम करते मुनि को और कहते कि आइए बैठिए, मेरा अहो भाग्य है कि आप हमारे आश्रम पर आए, लेकिन चुप कुछ नहीं। तुष्णिम ऋषि ने देखा कि बिल्कुल चुपचाप है और अकृत अर्हणादिकम, अकृत कुछ भी नहीं कहे, अरहण आदि कम जल का भी नहीं पूछे, जल पीने के लिए बैठने को नहीं कहे, रहस्य एकांत में थे। उपासीनम ऋषिश्चुकोप, और अगस्त ने देखा कि एकांत में बैठा है, और कोई ऐसा भी नहीं कि भाई बहुत काम धंधा में पड़ा हुआ है, एकांत में है, समय है, और फिर भी न तो उठ रहा है, तो बैठे रह गए। तो उठ नहीं रहा है, अरे उठे नहीं होते, बैठे बैठे भी हरे कृष्ण कह दिए होते तब भी एक शिष्टाचार पूरा हुआ होता, तो कुछ नहीं। मन में ये भावना आ गई कि ऐसे साधु महात्मा तो आते ही जाते रहेंगे, अब हम क्या उठ, नियम कैसे छोड़े। तो यह अज्ञान आ गया, ये अहंकार इसको कहते हैं। चुपचाप रह गए, कोई पूजा नहीं किए, सत्कार नहीं किए वचन से भी, तो ऋषि चुकोप, ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आया? विधि का अतिक्रमण करने के कारण क्रोध आया, अपने अपमान के कारण नहीं। श्री श्रीधर स्वामी जी ने इसको लिखा है चुकोप, चुकोप का अर्थ कोप किए। तस्मा इमं सापम अदात असाधु रयम दुरात्मा कृतबुद्धिरद्य विप्रावमंता विस्तम तमोंधम यथा गज स्तभुमति सह। तो अपने शिष्यों के सामने ही उनको साप दिए, तस्मई इमं सापम अदात, यह साप दिए, अयम दुरात्मा, यह दुरात्मा है, इसका हृदय शुद्ध नहीं है, अकृत बुद्धि, ये इसकी बुद्धि शिक्षिता नहीं है, इसके बुद्धि को कोई ट्रेनिंग नहीं मिला है किस देश में क्या काम करना चाहिए, यह अभिमानी है। यह दुरात्मा से तात्पर्य अभिमानी और अशिक्षित बुद्धि, विप्रावमंता, यह ब्राह्मण का अपमान कर रहा है। तो विषताम तमोंधम जथा गज स्तब्धमति सेवा, यह घोर तम में प्रवेश करे, अज्ञान में चला जाए, जैसे हाथी बैठा रह जाता है और हाथी स्तब्ध मति होता है, वैसे हो गया। इसलिए स एव भवतु इति शेष, यह हाथी ही हो जाए, गज ही हो जाए, बिल्कुल गज जैसा बैठा है, लगता है कि इसको उठने में मेहनत पड़ रही, गज जैसा स्तब्ध मति है, उदंड मति है, इसलिए ये गज हो जाए। अब तो अगस्त जी साफ देकर के चले गए, तो प्रश्न होता है कि महाराज इंद्रदुम्न फिर चरण में गिरे कि नहीं, उनसे क्षमा याचना आदि किए कि नहीं। नहीं, वो साफ देकर के चले गए, बैठे रह गए, लेकिन जब साफ दे करके जा रहे हैं अगस्त जी, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं सप्तवा गतो अगस्त्यो भगवान नृपसानुग, हे महाराज परीक्षित, भगवान अगस्त्य सानुग एवं सत्वा जय, भगवान अगस्त साप देकर चले गए। तो भगवान शब्द पर सारे आचार्य टीका करते हैं, भगवान का अर्थ है जितेंद्रिय, वास्तव में क्रोध नहीं हुआ, महाराज इंद्रदुम्न का हित करने के लिए उन्होंने साप दिया, इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी भगवान कह रहे हैं, नहीं तो कहते कि खल आया सांप देकर के चला गया, ऐसे कहते ना। लेकिन ब्रह्मर्षियों की सभा में अगस्त जी के प्रति ऐसे सुंदर शब्द का प्रयोग करना इस बात का द्योतक है कि अगस्त जी को वास्तव में क्रोध नहीं हुआ, वे इंद्रदुम्न महाराज की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। और महाराज इंद्रदुम्न इतनी भक्ति में है कि तत्परता तन्मयता के कारण वे नहीं कुछ कर पाए, भले विधि व्यवहार नहीं जाने, एटिकेट नहीं जानते थे, लेकिन भगवान के भक्त तो थे, वे प्रसन्न हुए। तो उन्होंने देख लिया कि अगर इस तरह से मनुष्य शरीर में रहेगा तो इसको भगवत प्राप्ति में बहुत विलंब हो जाएगा, क्योंकि जाने अनजाने अपराध हो रहा है। इसलिए उन्होंने मनुष्य शरीर छोड़ा दिया और हाथी का शरीर दिया, इसमें तो कोई अपराध करेगा नहीं और एक जन्म में भगवान को पा जाएगा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी अगस्त जी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे। कभी कभी नहीं समझने के कारण कुछ लोग इतना ही लेते हैं कि साप दे दिया, क्रोध कर लिया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो उनको भगवान कह रहे हैं, तो हमें भी तो ऐसा ही कहना चाहिए ना। हम यदि वास्तव में भागवत कहना जानते हैं, पढ़ते हैं और वास्तव में सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्ह पर चल रहे हैं, तो जैसे वो जिसके विषय में जो शब्द बोल रहे हैं वही शब्द बोलना चाहिए। कृपा किया वास्तव में उन्होंने, तो इस तरह से साप क्या दिया उन्होंने, कृपा किया और वे चले गए। नृप शब्द संबोधन करें कि महाराज आपको भी ब्राह्मण का साप मिला हुआ है। साप ब्राह्मण लोग देते ही रहते हैं और वो भी राजा थे, उनको साप मिला। खैर बेचारे वे तो सांप लपेटने नहीं गए थे, वो तो केवल चुपचाप बैठे रह गए, आपने तो सांप लपेट दिया ऋषि के गले में। लेकिन वो जो सांप दिया मरने का आपको, वो तो वास्तव में क्रोध में सांप दिया था, लेकिन अगस्त भगवान जो सांप दिए वो अनुग्रह करने के। आपको जो श्रृंगी ने साप दिया इसमें और इस साप में बहुत अंतर, कृपा किया। वही अगस्त जी की कृपा तो भगवत प्राप्ति में कारण हो गई, इस तरह से बता रहे हैं। आप तो राजर्षि दिष्टम तदुपधारे, महाराज इंद्रदुम्न पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? महाराज इंद्रदुम्न यही माने कि भगवान की यही इच्छा थी कि इतना दिन में मनुष्य शरीर में था, अब हाथी शरीर में हो जाऊं, यही ईश्वर की इच्छा, यह मेरे कर्म का फल है और भगवान की इच्छा है, इसलिए वे स्वीकार कर लिए। नहीं तो वे भी चाहते तो साप दे सकते थे अगस्त जी को, कह सकते थे ऐसे ही आए, मैं भगवान के भजन में था, मुझको हाथी बना दिया तो तुम भी कुछ हो जाओ। एक बार ऐसे साफ हुआ था, नवम स्कंध में कथा है, जनक महाराज सीता जी के पिताजी एक यज्ञ करना चाहते थे, तो उनके पुरोहित वशिष्ठ जी को उन्होंने कहा कि हमारा यज्ञ करा दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा यज्ञ करा दूंगा, लेकिन मुझे इंद्र का निमंत्रण है, पहले उनका यज्ञ मैं करा लूंगा तब तुम्हारा कराऊंगा। जो कहकर चले गए, इंद्र का यज्ञ कराने लगे। जब इसके गुरु हैं तो पहली प्राथमिकता इसको देनी चाहिए ना, इसको प्रायोरिटी देना चाहिए था। लेकिन इंद्र बहुत धनी है, वो तो ज्यादा दक्षिणा देंगे, तो इसलिए वो वहां चले गए और सोचे जजमान तो अपना है ही, बाद में इसको करा ले। तो उधर वशिष्ठ जी चले गए, तो जनक महाराज ने सोचा कि जीवन का क्या ठिकाना, गुरु महाराज कब से आएंगे। वो यज्ञ चालू करा दिए, दूसरे ऋतविजों से यज्ञ चालू करा दिए। जब वशिष्ठ जी आए तो देखते हैं कि जजमान इस तरह से यज्ञ चालू करा दिए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, क्रोध इतना आया कि उन्होंने कह दिया तुम विदेह बिना देह के हो जाओ, मर जाओ, नहीं तुम मर जाओ, मृतक मर जाओ, गुरु की अवहेलना कर रहे हो। तो निमि महाराज भी साथ दिए, तुम भी मर जाओ, लोभ से तुम धर्म को नहीं जानते हो, लोभे न धर्मम अजान, तुम भी मर जाओ। तो उधर गुरु जी मरकर गिर गए, इधर शिष्य मरकर, ये भागवत में कथा है। कहने का आशय सुखदेव गोस्वामी का यह है कि महाराज इंद्रदुम्न चाहते तो प्रतिशाप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार किया कि अगस्त जी के मुख से भगवान हमारे जीवन में व्यवस्था दे रहे हैं। इसलिए अगस्त जी पर भी क्रोध नहीं हुआ और अपने लिए कोई घबराहट नहीं हुई कि हाथी हो जाऊंगा। भगवान की जो इच्छा है, हमारे प्रभु की जो कुछ करना चाहे कोई रहे, यही है वास्तव में सज्जन का आचरण। प्रतिशोध लेना या प्रतिशाप देना यह उचित नहीं होता। कुछ लोगों को तो कोई दुर्वचन दूसरा आदमी बोल दे तो जब तक ये शब्द बेधी बाण नहीं मारेंगे तब तक चैन ही नहीं आता। सोचते हैं कि मैं जबान बंद कर दिया उसका, तो वो दो गाली दिया तो मैं चार गाली दिया, तो इसको विजय माना जाता है। संसार विजय माना जाता, लेकिन इंद्रदुम्न महाराज की महिमा देखी। अगस्त जी जैसे ऋषि का साप हुआ, प्रकट रूप से कितना भयावह साप है कि एक राजर्षि और एक पशु हो जाए, बहुत बड़ा घातक साप था ना। लेकिन ये मानते थे तत्ते नुकंपाम सुसमिक्षमाण भुंजा नएवात्म कृतम विपाक, भगवान की कृपा इस रूप में हुई है, यही वो मानते रहे। आपन्न कौंजरिम जोनिम आत्मस्मृति विनाशनिम, आत्मा का स्मरण विनष्ट कर देने वाली कौंजरी जोनिम, कुंजर की हाथी की जोनी उनको मिली। तब महाराज परीक्षित कहते हैं कि लेकिन इस प्रकार से भगवान का स्मरण कैसे हो गया हाथी के शरीर में? तब कहते हैं हर यर्चना अनुभावे न जब गजत्रे प्यनुस्मृति, भगवान की बहुत पूजा किया था, भजन किया था राजर्षि इंद्रदुम्न ने, इसलिए गजत्रे अति हरि हरे अनुस्मृति, गज शरीर में भी भगवान का स्मरण हो गया। ये अविनाशी भक्ति, नेहा भी क्रमनाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मोक्ष धर्म सत्राय के महत्व। भक्ति कभी विफल नहीं जा सकती है। गज शरीर में वास्तव में इंद्रदुम्न महाराज ने कोई भजन नहीं किया, लेकिन इंद्रदुम्न शरीर में कितना किया था तो सामने प्रकट। तो पहले हरि अर्चना अनुभाव है ना, भगवान को उन्होंने पूजा किया था, खूब मन लगा करके भजन किया था, जप किया था। तो इस तरह से यही कारण था कि गज शरीर मिलने पर भी भजन का प्रभाव नहीं गया, भगवान का स्मरण हुआ। किसी व्यक्ति के जीवन में भले और सारी सफलताएं हों, लेकिन भगवान का स्मरण न हो, कृष्ण का भजन न हो, तो सब व्यर्थ माना जाता है। गज शरीर में भी भगवान का स्मरण हुआ है, बहुत बड़ी बात। नहीं तो मनुष्य के शरीर में तो आदमी भजन ही नहीं कर रहा है, हाथी क्या भजन करेगा? गज गज शरीर में भी स्मरण हो गया। अब कथा का उपसंहार करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं विमोक्ष गज जुत्थपम अब्जनाभ तेना पिपार्षद गतिं गमिते न युक्तः गंधर्व सिद्ध विबुधय रूपगीयमान कर्माद्भुतम सुभवनम गरुणासन गात। इस प्रकार गजजुत्थपम गजेंद्र को विमोक्ष विमुक्त करके, पार्षद बना करके, पार्षद गतिम गमित है ना, जब गजेंद्र पार्षद बन गए तो अपने पार्षद से युक्त होकर अर्थात गरुण जी पर बैठा कर भगवान उनको ले गए वैकुंठ। ऐसी गति बहुत लोगों की नहीं होती है। ध्रुव महाराज को भगवान के पार्षद लेने आए थे, और किसी को भगवान के पार्षद आते हैं लेने के लिए, लेकिन गजेंद्र को साक्षात भगवान अपने गरुण जी पर बैठा करके ले गए। भगवान गरुण जी पर बैठे हैं और बगल में ही वो बैठे थे, तो खड़ा रह करके सेवा कर रहे होंगे भगवान की। तो गजेंद्र हम लोग कहेंगे पूर्व का हाथी का शरीर है, लेकिन अब उनका क्या नाम हुआ होगा? तो भगवत पार्षद हमका नित्य नाम होगा कुछ ना कुछ, लेकिन हम लोग तो कथा में ही कहते हैं गजेंद्र चले गए भगवान के धाम, गजेंद्र चले गए। और भगवान के साथ गए। तीन गमिते ने जो पार्षद गति गमिते ने जुक्त अब जनाब। और जब भगवान जाने लगे तो उस समय गंधर्व सिद्ध देवता आदि सब भगवान की कीर्ति को गाते हुए चले। जैसे सामान्य व्यक्ति को भी आदमी कुछ दूर छोड़ता है, इसको प्रस्थापन कहते हैं, और जब आता है तो उसकी अगवानी करते हैं, स्वागत करते हैं। तो भगवान के साथ जितना दूर जा सकते थे देवता आदि सब गए गाते हुए। गरुणासन होगा, भगवान गरुणासन बन कर आए, गरुण जी पर चढ़ कर। तीनों युक्त है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गजेंद्र के साथ गरुणासन चले गए अपने धाम में। कैसा धाम है भगवान का? अद्भुतम कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, अद्भुतम। उनके कर्म का बखान देवता लोग कर रहे थे, भगवान अद्भुतम स्वभवन, भगवान का भवन अद्भुत। अद्भुत का अर्थ है कि लोक में किसी भी भवन से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। पृथ्वी के भवन की तो बात नहीं की जा रही है, वो स्वर्ग से तुलना करके कही जा रहा अद्भुत। भवन का अर्थ है धाम स्थान, चले गए। अब इसे प्रसंग के श्रवण कीर्तन का क्या फल होता है, श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। एतन महाराज मया तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम् स्वर्ग्यम जसस्यम कलिकल्मषापहम् दुःस्वप्ननाशम कुरुवर्जसिनवताम्। हे महाराज, यह गजराज मोक्षणम कृष्णानुभाव, गजराज को मुक्त करने की जो कृष्ण के अनुभव का मैंने वर्णन किया, यह स्वर्ग देने वाला है, वैकुंठ देने वाला है। यशस्यम जस वर्धक है, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला है। दुःस्वप्न का नाशक, श्रीणवतान केवल सुनने मात्र से। इस प्रकार से इस प्रसंग का फल है, ये कृष्णानुभाव है। अनुभव का अर्थ होता है भक्तों के प्रति भगवान की भावना, कितना प्यार किए भगवान गजेंद्र जी से, दौड़ करके आए और मुक्त किए और अपने साथ ले गए वैकुंठ। यह अनुभव कृष्ण का। श्रीमद् भागवतम में भगवान के अनुभव दिए गए। जब किसी भाव को प्रकाशित करता है कोई कर्म तो उसको अनुभव कहा जाता है। भक्तों के प्रति भगवान का भाव है तो भाव प्रकाशित हुआ गजेंद्र के उद्धार द्वारा। तो यह कृष्णस्य अनुभाव, कृष्ण का अनुभाव, भक्तों से इतना प्रेम। भाव किसी का कितना भी हृदय में हो लेकिन जब तक क्रिया में नहीं आता है तो समझ में नहीं आता है। भगवान भक्त वत्सल है, भक्त से प्रेम करते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा? गजेंद्र के उद्धार में पता चल गया कि ओहो कितना स्नेह है भगवान का, दौड़ करके भगवान उद्धार किए। तो इस प्रसंग में भगवान का अनुभव प्रकट हुआ है। और मैंने आपसे कहा ये स्वर्ग्यम, स्वर्ग का अर्थ है वैकुंठ। सुनने वालों को यह वैकुंठ देता है। और फिर साधारण स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या। जसस्यम, मनुष्य बड़ा से बड़ा काम करने में समर्थ हो जाता है इस प्रसंग को सुनने पर, उसे कर्म में सफलता मिलती है तो उसका यश बढ़ता है। और कलयुग के सब प्रकार के पापों का नाशक है। और दुःस्वप्न नाशम, दुःस्वप्न का अर्थ है कभी कभी ऐसा सपना आता है कि फल आने वाला होता है, कोई घटना घटने वाली होती, कर्म का फल चालू हो जाता है और व्यक्ति को भोगना पड़ता है, तो कभी कभी सपना में उसकी सूचना दे दी जाती है। सभी स्वप्न सच्चे नहीं होते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे स्वप्न होते हैं कि भविष्य में बहुत बड़े अनिष्ट की सूचना दे देते हैं कि आने वाला है, लेकिन उस समय उसको किसी भी उपाय से रोका नहीं जा सकता है, उस प्रारब्ध को, कर्म फल को। लेकिन यदि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी जाए तो कितना भी घातक कर्म फल चल करके भी नलिफाई हो जाए, खत्म हो जाएगा, उसे नहीं भोगना पड़ेगा, उसको दुःस्वप्न नाश कहते हैं। जो कर्म फलाभिमुख है, फल देने वाला है, वो भी टल जाएगा। और फिर जो संचित है वो नष्ट हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात। इस प्रसंग के सुनने का फल है। और जथानुकीर तेन ते तो श्रेयस कामा द्विजात सुशेह प्रातरुत है दुस्वप्ना दीपशांत। भगवान कहते हैं कि द्विजाति गण सवेरे भोर में स्नान करके पवित्र हो करके दुस्वप्न आदि उपद्रवों की शांति के लिए इसका जथावत कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं। दुस्वप्न शब्द से तत्पर्य है कठिन कर्म बंधन। कर्मों के अनुसार दुख होता है व्यक्ति को, संकट आते हैं, लेकिन यह एक ऐसा प्रसंग है कि इसको सुनने पर, पाठ करने पर सब प्रकार के संकट से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस पर मानो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि इसमें प्रमाण कैसे हम जाने कि इस कथा का इतना प्रभाव है। तब कहते हैं इदम आ हरि प्रीतो, ये भगवान ने ही अपने मुख से ऐसा कहा त्रिकूट पर्वत पर, भगवान प्रमाण है सबसे, उन्होंने ही इस बात को कहा था। इदम आ हरि प्रीतो गजेन्द्रम कुरुसत्तम श्रृणवताम सर्वभूतानाम सर्वभूतमयो विभुः। भगवान ने ही ये बात स्वयं अपने मुख से कही थी। गजेंद्र का जब उद्धार कर दिए तो गजेंद्र को सुना करके, चतुर्भुज रूप में गजेंद्र थे उसने सुना करके, और श्रृणवताम सर्वभूतानाम वहां पर उपस्थित सारे देवता सुन रहे थे, सबको सुना करके भगवान ने यह बात कहा था। भगवान सर्वभूतमय है, सबके हृदय में बसते हैं। सर्वभूतमय का भी अर्थ है वहां जितने ब्रह्मा आदि थे वे सब कृष्ण पर, भगवान पर ही चित्त लगाए थे। तो भगवान सबके सुनते सुनते ये बात कहे थे अपने मुख से इसकी महिमा। देखिए क्या भगवान ने कहा था, श्री भगवान वाच, भगवान की बात को अविकल रूप से सुखदेव गोस्वामी रिले कर रहे हैं। तो भगवान ने ये कहा था, भगवान क्या कहे थे सुनिए ध्यान से। ये माम त्वाम च सरस्येदम गिरी कंदर काननम बेत्र कीचक बेणु नाम गुलमानी सुर पादपान। गजेंद्र से भगवान कहते हैं कि जो लोग माम मेरा, त्वाम तुम्हारा, जो मुझको तुमको सरस चैदम और इस सरोवर का और इस गिरी कंदर का नाम पर्वत का, कंदरा का, वन का, बेत कीचक बेणु नाम गुलमानी सुरपादपान, यहाँ जितने भी बेत हैं, कीचक हैं, बांस हैं, लताएं हैं, कल्प वृक्ष हैं, इन सब का जो स्मरण करता है वो सब पापों से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए विस्तार से वर्णन किया गया था वृक्षों का, वन का स्मरण करने के। बताइए पर्वत का, वन का, बांस का स्मरण करने से व्यक्ति सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह भगवान के लीला का साइट बना, धाम बना, एक प्रकार से भगवान वहां उपस्थित हुए और जिस वन में गजेंद्र रहते थे उस वन की महिमा भगवान गा रहे हैं। जो मेरा स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं, तुम्हारा स्मरण करते हैं सरोवर का, गिरी कंदर काननम बेत कीचक वेणु नाम गुलमा निश्वपाद पान श्रृंगारिमान धीषणानी, इन तीनों सिंहों का, शिखरों का जो स्मरण कर, इमानी, इमानी का अर्थ है ये, भगवान अपने उंगली से दिखाकर गजेंद्र को कह रहे हैं ये पर्वत के शिखर जहाँ तुम रहे हो, इनका जो स्मरण करता है सब पाप से मुक्त हो जाता है। ये तीनों शिखर सामान्य नहीं है गजेंद्र, एक पर मैं रहता हूँ, एक पर शिव जी रहते हैं और एक पर ब्रह्मा रहते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। ये तीनों हमारे धाम है, मैं और ब्रह्मणा शिव से च। कितना भगवान महान रूप से बोल रहे हैं, जैसे भगवान शिव को और ब्रह्मा जी को अपने समान कह रहे हैं कि तीन पर्वत के शिखर हम तीनों के धाम है। भगवान कभी कभी आते थे सैर करने, शिरोदम में प्रियम धाम श्वेत दीपम च भास्वरम। आगे से इस कानो है कि इन सब का जो स्मरण करते हैं इसमें से एक का भी वो सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। सब नाम द्वितीय में ले रहे हैं, शिरोदम क्षीर समुद्र जो मेरा प्रिय धाम है, और क्षीर समुद्र के भीतर जो मेरा श्वेत द्वीप है, भास्वर चमकने वाला, इसका जो स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। श्रीवत्सम कौस्तुभम मालाम गदम कौमोदकी मम सुदर्शनम पांचजन्यम सुपर्णम पतगेश्वरम। भगवान के स्मरण के साथ साथ और क्या क्या स्मरण करना चाहिए है। श्रीवत्स भगवान के बाएं वक्षस्थल पर श्री रेखा और कौस्तुभम कौस्तुभ मणि माला घुटने तक पैर तक लटकी हुई फूल की माला गदा जिसका नाम है कौमोद की और सुदर्शन चक्र पांचजन्य शंख और गरुण जी। भगवान इस तरह से कह रहे हैं कि इनका जो स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं, अपने स्मरण के समान बता रहे हैं। शेषम च मत्कलाम सूक्ष्माम श्रीयम देवी मदाश्रयाम ब्रह्माणम नारदम ऋषिम भवम प्रहलादमेव च। जो मेरी ही कला शेष नाग का स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं, मेरी शरण में रहने वाली मेरी आश्रिता श्री का जो स्मरण करते हैं लक्ष्मी जी का सब पाप से मुक्त हो जाते हैं, ब्रह्मा जी का जो स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं, नारद जी का प्रहलाद महाराज का शिव जी का जो स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। देखिए कितना उदार भाषा में भगवान बोल रहे हैं। भगवान ही वास्तव में बोलना जानते हैं, मानद हैं, मान देते हैं भगवान सबको जो मेरा स्मरण करते हैं। वहां पर शिव जी ब्रह्मा जी बेचारे वो बड़े सिर झुकाए हुए सोच में पड़े थे कि हम लोग नहीं गजेंद्र को बचाए तो भगवान की दृष्टि में हम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन भगवान वहां कह रहे हैं जो मेरा शिव जी का इनका इनका स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। तब तो शिव जी को कुछ ठीक लगा होगा कि भगवान प्रसन्न लेकिन कितना भगवान उदार भाव से बोल रहे हैं, उनको थोड़ा भी ये गुस्सा नहीं था कि ये लोग नहीं गजेंद्र को बचाए, भगवान चाहते भी नहीं थे, अगर बचा दिए होते तो भगवान आए नहीं होते और केवल हाथी का शरीर बच गया होता ना, पार्षद तो बने नहीं होते। इसलिए ब्रह्मा जी आदि सोच रहे थे हम लोगों ने अच्छा किया कि इसको नहीं बचाया भगवान आए तो ऐसे मुक्त की। और मैंने बहुत अवतार लेकर के जो लीलाएं किया है हरे कृष्ण, जैसे मत्स्य कूर्म वराह आदि अवतार, उन अवतारों में हमने जो कुछ किया है हमारे अनंत पुण्य पवित्र कर्मों को जो गाते हैं सुनते हैं वो पवित्र हो जाते हैं, जो सूर्य का स्मरण करते हैं पवित्र हो जाते हैं, सोमम चंद्रमा का, भूतासनम अग्नि का, ये सब स्मरण के विषय हैं। अच्छा प्रणवम सत्यम अव्यक्तम, जो प्रणव ओंकार का स्मरण करते हैं वे सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। और सत्यम सत्य का, प्रणवम सत्यम अव्यक्तम, यहाँ सत्य से अर्थ है भागवत धर्म का। गोविप्रम, जो गायों का ब्राह्मणों का और अव्यय धर्म सनातन धर्म का स्मरण करते हैं तो नियम पालन करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। दाक्षायणी धर्म पत्नी, दक्ष प्रजापति की पुत्रियों का जो स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं, धर्म की पत्नियों का। और सोम कश्यपेरपि, सोम की पत्नी कश्यप की पत्नी, ये सब दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं, उनका जो स्मरण करते हैं पाप से मुक्त हो जाते हैं। गंगाम सरस्वतीम नंदाम कालिंदीम सितवारणम ध्रुवम ब्रह्म ऋषिम सप्त पुण्य श्लोकांश मानवा, गंगा का, सरस्वती का, नंदा का, कालिंदी और ऐरावत हाथी, ध्रुव महाराज, सप्तर्षि और समस्त मनु महाराज और उनके पुत्रगण। उत्थाय अपर रात्रांते, भोर में उठ करके जो कोई व्यक्ति मन को एकाग्र करके इन सब का स्मरण करता है जो मेरे ही रूप हैं, तो वह सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो मेरा स्मरण करता है और इन सब का, तो सब पाप से मुक्त हो जाता है। और हे प्रिय, गजेंद्र के द्वारा की गई इस स्तुति से जो मेरा स्तवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्राणांत के समय शरीर छोड़ते समय उनको मैं विमला बुद्धि देता हूँ, मैं देता हूँ। शरीर छोड़ते समय विमला बुद्धि अथवा विपुलाम गति, मैं वैकुंठ देता हूँ। इस स्तुति के द्वारा जो मेरा स्तुति करते हैं तो मैं उनको वैकुंठ देता हूँ, यह बहुत ही शुद्ध कृष्ण भावना में ज्ञान विमल बुद्धि देता हूँ। यह बात भगवान ने कहा कह करके, इत्यादि हृषिकेश प्रथमाय जल ज्योतम, ऐसा कह कर भगवान ने शंख बजाया था। जैसे ट्रेन खुलती है तो सीटी देती है, वैसे भगवान जब गरुण जी को आप चलाना चाहते थे तो बहुत हर्षित किए देवताओं को, शंख बजाए, इतना प्रवचन करके शंख बजाए। और इसके बाद गरुण जी तो समझते ही थे, गरुण जी लेकर के भगवान को और गजेंद्र को चले गए। इस तरह गजेंद्र मुक्त हो गए। हर्षेन विवधानिकम आरुरोह खगाधिपम, भगवान देवताओं को हर्षित करते हुए शंख बजा करके तब गरुण जी पर चढ़े। गरुण जी पर भगवान चढ़ते हैं कैसे? गरुण जी ऐसे बहुत ऊंचे हैं, लेकिन अपने पंखों को बिल्कुल जमीन पर सटा देते हैं, वो सीढ़ी जैसा बन जाता है, भगवान आराम से चढ़ लेते हैं। हाँ, भगवान को चलना नहीं पड़ता है, भगवान जो ही पंख पर चढ़ते हैं तो गरुण जी पंखों को ऐसे उठा कर लेते हैं और चले। इस तरह भगवान अपने प्रिय भक्त गजेंद्र को लेकर अपने धाम चले गए। राजन उदित में तत्ते हरे कर्माघ नाशनम गजेंद्र मोक्षणम पुण्यम रैवतम तंतरम सिरुण। लास्ट में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, मैंने बहुत पवित्र गजेंद्र मोक्ष की कथा आपसे कहा, अब रैवत मनवंतर की कथा सुनिए। यहाँ से अब समुद्र मंथन की कथा आगे प्रारंभ हो जाती है। यह बारंबार कहा गया है कि गजेंद्र मोक्ष बहुत पवित्र कथा है, हमारी अविद्या का हरण करता है, भगवान में प्रेम देता है। तो इस तरह यह प्रसंग यहाँ पर पूरा हुआ। यहाँ पर कुछ भक्तों ने पहले से ही हमसे कहा था कि गजेंद्र मोक्ष की कथा होनी चाहिए, तो गजेंद्र जी की कृपा से, उनके प्रभु की कृपा से ये कथा पूरी की गई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कथा का आयोजन किया। क्या जरूरत है, ऐसे कुछ घूम लेना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रसंग पूरे होते हैं तो मन में आता है कि नहीं, जरूर कहना चाहिए, ऐसे भक्तों के कृष्ण भक्ति का वर्धन होता है। आपको, आप सब भक्तों को जो भी कथा में आए, भूरी भूरी धन्यवाद है। और गरुण वाहन भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सब की मति उनके चरणों में लगी रहे। हरे कृष्ण।
न्यू नवदीप धाम मंदिर की ओर से महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आकर के यहाँ गजेंद्र मोक्ष की हम सबको कथा कही। महाराज जी वास्तव में उच्च कोटि के भक्त हैं, उन्होंने कथा इतने सुमधुर ढंग से कही कि हम वास्तव में उसे हमेशा के लिए उस कथा को याद रखेंगे। कथा में उन्होंने जो बतलाया कि जैसे कि गजेंद्र का चरण पकड़ करके ग्राह तर गया, वैसे भी हम चाहते हैं कि हम महाराज जी के चरण कमलों को पकड़ करके भगवान के धाम में ध्यान सकें। वास्तव में भक्तों की कृपा से ही व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है, बिना भक्तों की कृपा से भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। नहीं, पर प्रभुपाद जी की कृपा अभी आप वितरण कर रहे हैं, इसलिए आपके चरण पकड़ना, आपके चरण रज की धूली में लौटना, ये भागवत के वाक्य हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी शरण ग्रहण करो, पर यदि कोई, जैसे दो मित्र है, कहानी मुझे याद आती है कि दो मित्र हैं, एक राजा बना और एक चोरी करके जेल में गया, तो उसे अपने मित्र की याद आई कि मेरा मित्र तो राजा है, मैं उससे छूट जाऊंगा। तो वो अपने राजा मित्रों को लिखता है, किसी तरह संदेश पहुंचाता है, तो कहता आओ मेरे पास आओ, पर अब जेल से छूटे कैसे। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, पर अभी तो हम संसार में फंसे हैं, शरण में कैसे जाएं। तो भगवान की वो वैसे कृपा यदि भक्तों के थ्रू हमें मिलती है तो ही हम भगवान की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कई तरह की शिक्षाएं वास्तव में गजेंद्र मोक्ष के थ्रू उन्होंने पूरी भक्ति भावना में हमें ओतप्रोत किया है। सभी कुछ भक्त के लिए जो जरूरी है वो गजेंद्र मोक्ष के द्वारा महाराज जी ने हमें बतलाया। तो उनसे यही नम्र निवेदन है कि बार बार हम पर महती कृपा बरसाते रहें, आते रहें, हम पर हमें आशीर्वाद दें। और वास्तव में भक्त लोग जो जाते हैं ये भगवान की भक्ति को देने के लिए जाते हैं, उस जगह को पवित्र करते हैं और लोगों में भक्ति भावना फैलाते हैं। जैसे गंगा जी में जाने से, डुबकी लगाने से उतनी पवित्रता नहीं होती, पर हम धामों में जाते हैं एक नदी में स्नान के लिए नहीं बल्कि भक्तों का संग के लिए। तो महाराज जी तो यहाँ स्वतः ही गंगा बहाने के लिए यहाँ आए हैं, और गंगा से भी ज्यादा हमें, क्योंकि वो भगवत धाम में ले जा सकते हैं हमें। तो आप भक्तों को भी कभी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने यहाँ से यहाँ आकर के शांति से सुना। महाराज जी कह रहे थे कि यूजुअली इंडिया में आकर के ग्राम में चर्चा आकर के, क्यों वहाँ पहली बार मिलते हैं तो घरों की बातें होती हैं, पर आपने बड़ी शांति से सुना, बड़े मन लगा करके सुना, मनोयोग पूर्वक सुना। और तो आप ये भी भक्ति दर्शाती कि आप भी भक्ति में कितने सभी आप अग्रसर हैं, और महाराज जी की कृपा से और ज्यादा आप अग्रसर हों और भक्ति में आप सबका मन लगे और महाराज जी की हम सबको कृपा प्राप्त होती रही, ये उनसे निवेदन है। हरे कृष्ण। तो आप दूसरे भी जो आकर के बोलना चाहें, राधा रमन प्रभु और जो भी, तो यहाँ आकर के आप अनुमोदन करेंगे और जो कुछ आप महाराज जी को भेंट देना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में आज बड़ा शुभ दिन है कि कई भक्तों का ब्राह्मण इनिशिएशन हुआ और आज निर्जला एकादशी भी है, तो आप एकादशी रख रहे हैं। तो इन सब का, इन सब चीजों का पुण्य बहुत ज्यादा है। तो महाराज जी ने जो कथा कही उसका खुद का ही उनको स्मरण उन्होंने हमारे आगे जैसे चित्रण कर दिया हो, जैसे चित्रपटल पर जैसा हो वैसा उन्होंने हमें दर्शा है, तो वो खुद भी सभी इन चीजों का, सभी का स्मरण भी बहुत पुण्यकारी है। और वैसे भक्तों का संग, भक्तों का स्मरण, उनके मुंह से कथा सुनना, शिक्षा सुनना, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप नियमित ऐसे कथाओं में आते रहिए। अभी नेक्स्ट वीक 8 तारीख को राधानाथ जी महाराज आएंगे, तो वो उनका प्रोग्राम 5:30 बजे शुक्रवार को है, तो आप सभी अवश्य आएंगे। और कल प्रथम दिन है महीने का, तो प्रथम शनिवार है, तो उस शनिवार को हम लोग सभी एकत्रित होते हैं भगवान का कीर्तन गायन सवेरे मंगल आरती में करने के लिए। तो आप मंगला में जरूर आइएगा। और परसों के रोज रविवार हम लोगों का ये रघुनाथ दास गोस्वामी का चीड़ादती महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तब भी आप सभी जितने ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो आप संडे आते ही हैं, पर ज्यादा से ज्यादा आप आए और उसे उसका लाभ लें। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। मैं महाराज का प्रवचन जहाँ तक हमको समय मिलता है मैं सुनता रहता हूँ जहाँ भी जाता है, और उनकी कथा सुनने में हमें बहुत ही आनंद होता है और बहुत कुछ जानकारी मिलती है। उनके एक एक शब्दों के जो व्याख्या करते हैं वो हमें कहीं और नहीं सुनना नहीं मिलता, और उनके शब्दों, भगवत के जो शब्दों के जो व्याख्या कर रहे हैं वो बड़ी विस्तार से कर रहे हैं और उससे हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। तो मैं भी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि हमें हमेशा आपकी कथा का सत्संग मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहे भक्ति पर। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद स्वामी नीति नामिने परम पूजनीय श्री गुरु महाराज अपनी आमादेर दंडवत विनीत प्रणाम ग्रहण करुन अपनार भगवत पुण्य कथा श्रवण करे आमरा परम आनंद लाभ करेछि। महाभाग्य बोले एरूप सुंदर ओ सहज सरल भावे भगवान श्रीकृष्णेर महिमा सुनबार सौभाग्य हय। परम भागवत जखन श्रीकृष्ण गुण कीर्तन करेन तखन ता सहजेई हृदयंगम हय। আপনার শ্রীমুখের বাণী যেন যথাযথ পালন করতে সমর্থ হই এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের শ্রী চরণ কমলে আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আপনার শ্রী চরণে আমাদের ভক্তিযুক্ত প্রণাম নিবেদন করি। ইতি আপনার শ্রী চরণ আশ্রিত রাধা মোহন দাস গন্ধর্ব দেবী দাস।
परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एवं समस्त उपस्थित वैष्णव बहनों एंड भ्राताओं, जय श्री कृष्ण। यह हमारा सौभाग्य है कि पूज्यपाद अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम के उपरांत भी कृपा कर पिछले 3 वर्षों से हम सभी को भगवत धर्म लीलाओं के रूप में सुनाते रहते हैं। आप सभी ने जिनने पूज्यपाद के सानिध्य का लाभ संपूर्ण 9 दिनों तक लिया है परम भाग्यशाली हैं एवं वास्तव में ही श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हैं। मेरा पिछले 2 वर्ष से यह दुर्भाग्य रहा है कि मैं सतत सानिध्य का पात्र नहीं रह पाया हूं, किंतु मुझे संतोष इस बात का है कि भले ही थोड़े क्षणों के लिए मुझे महाराज जी के दर्शन एवं चरण स्पर्श का सौभाग्य अवश्य मिला है। मेरा यह विश्वास है कि मात्र महाराज के दर्शनों से मेरे अपने अनेक जन्मों के दारिद्र्य कम अवश्य हुए होंगे। महाराज की कृपा एवं स्नेह ऐसा ही रहे तो भगवान श्री कृष्ण भी मुझे क्षमा करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। पुनः पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन करता हुआ समस्त वैष्णवों का दास मनमोहन दास।
मैं श्री राधा गोविंद महाराज के चरणों में अपना सादर दंडवत प्रणाम करता हूं और इस गजेंद्र मुक्त के रसास्वाद कराने के लिए बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं। इस रसास्वाद से हमारा मन शुद्ध होता है और भौतिक चीजों से मुक्त होते हैं। लेकिन होता है क्या, जैसे हाथी शुद्ध स्नान जल में स्नान करने के बाद फिर बाहर निकलता है, बार बार अपने शरीर पर धूल डाल के मलिन कर देता है, मेरी भी स्थिति ऐसी ही रहती है। 8 दिनों की कथा सुनने के बाद भौतिकता से फिर हम नाते जोड़ देते हैं और क्या करना चाहिए है समझ में नहीं आता है कि रसास्वाद कथा का रसास्वाद खत्म हो जाता है। कथा का रसास्वाद नित्य करना चाहिए तो मैं महाराज से गौरव करता हूं कि अगले साल एक बार आने से कहीं ज्यादा समय इधर आया करें, एक बार नहीं ऐसा प्रसाद करने के लिए बुलाते हैं। ऐसा नहीं होगा तो हम शुद्ध होंगे और फिर मलिन होंगे और इसी चक्कर में फंसे रहेंगे, तो इस चक्कर से निकलने के लिए महाराज को कृपा करनी ही पड़ेगी। महाराज कहेंगे कि मेरे कैसेट सुन के भी आप रसास्वाद कर सकते हैं, लेकिन कैसेट में और सामने बैठने के सुनने में रसास्वाद का बहुत फर्क होता है। और जब कैसेट सुनते हैं घर में तब कुछ न कुछ काम में भी फंस जाते हैं बीच में, और इतना रसास्वाद नहीं ले सकते हैं। इस समय भी हम कैसेट सुन सकते हैं, लेकिन मैं महाराज को शुद्ध होने के लिए और कथा सुनाने के लिए फिर इधर इच्छा प्रदर्शित करता हूँ कि साल में एक साल से भी एक दफा से भी ज्यादा इधर आने की कोशिश करें। और ऐसे भी अभी महाराज जी की न्यूजर्सी में आने की जरूरत बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि उनके कई शिष्य भी हो चुके हैं, तो उनके भी उनके लिए कुछ जिम्मेदारी होती रहेगी, तो उनको भी कुछ मार्गदर्शन करने के लिए इधर आने की जिम्मेदारी रहती रहेगी। मैं मानता हूँ कि महाराज अपने शिष्यों के साथ ईमेल और फोन से बात नहीं कर ले, लेकिन इधर खुद आके बात करे और हमको कराते रहे। फिर मैं महाराज को यही अर्ज करता हूँ कि साल में आज चार दिन कथा कही, लेकिन कुछ ज्यादा समय इधर रह सके तो हमको रसास्वाद करने का बहुत आनंद मिलेगा, और साल में एक दफा से ज्यादा भी आ सके तो हमको बहुत आनंद मिलेगा। हरे कृष्ण हरि बोल।
Because my Hindi language is very poor, so I had to prepare everything in English. Respected Radha Govinda Maharaj Ji, accept our heartful obeisances to your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. Your eloquent describing of Srimad Bhagavatam brings us to the transcendental bliss. Gajendra's prayers you explain in very sweet and melodious way that attracts our heart. Despite difficulties that we have in India, you have come to show us mercy by reciting Bhagavatam as Prabhachan. As Prahlad Maharaj said in Canto 4, chapter 30 and text 37, Prayana Deva Munnaya Sha Vimukti Kama मौनम चरन्ति भिजाने ना परार्थ निष्ठा नोइतन विहाय कृपानम विमुक्षो एको नैन्नम त्वद अश्य सनानम भवातु अनुप्ष। द ट्रांसलेशन, माय डियर लॉर्ड निसिंहदेव, आई सी दैट देयर आर मेनी सेंटली पर्सन्स इंडीड, but they are interested only in their own deliverance. Not caring for the big cities and towns, they go to the Himalayas or the forest to meditate with a vow of silence. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone. Leaving aside all these poor fools and rascals, I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. Therefore, I wish to bring them back to shelter at your lotus feet. Srila Prabhupada was epitome of this verse, and you, Radha Govinda Maharaj Ji, are real loyal followers of him by rendering same kind of service, although we are not qualified. Please, Maharaja, keep your mercy flowing to us regularly and never let it dry. I am unqualified to describe the feelings, so please forgive me for my shortcomings. Your loyal sevak, Nandadulal Das. Just before, you know, one thing I want to tell. Actually, I talked to Mugesh Prabhu today over the phone. There's many of you know Indradumna Maharaj, who came here and gave lecture. I think, you know, many of you know. So the Maharaj has sent, you know, through email, that on 26th of May, while they were actually having program in Poland. Now, some miscreant has actually dealt a heavy blow on the bodies of his devotees. Now, a lot of people were hurt. So, at the end of the lecture, everything, we'll have special prayer to Nishinadev so that Maharaj can continue preaching like Radha Govinda Maharaj is doing for us. Hare Krishna.
नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाद भूतरे श्रीमते भक्ति चरु स्वामी ते नामिने नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाद भूतरे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज मैं क्षमा मांगता हूं कि मुझे आज टाइम नहीं मिला है कुछ लिखने के लिए लेकिन फिर भी मैंने साहस किया बोलने का क्योंकि आपने जो कथा में जो टू द पॉइंट बात की है कि भगवान का नाम देना चाहिए और भगवान का नाम से ही हम लोग ये कलयुग में तर सकते हैं तो इधर आकर आप हर एक वर्ष ऐसा ऐसा कहते हैं तो हमारी जो बुद्धि है उसमें कुछ बात समा जाती है और उस बात से मैं आपको आपका बहुत आभारी हूँ थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण
परम पूज्य श्री राधा गोविंद जी महाराज और श्रोता बंधु और बहनों हरे कृष्ण श्री राधा गोविंद महाराज ने सात समुन्द्र पार करके यहाँ हमारे बीच में आकर जो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई है उसमें सब भक्तजनों का जीवन धन्य बन गया है इसी तरह हर साल हमारे बीच में आकर भागवत कथा अमृत का पान कराते रहेंगे यही मनोकामना है संत कबीर जी ने सच कहा है धरती को कागज करो कलम करो बन राय सात समुद्र की बसी करो फिर भी हरिगुण लिखा ना जाए समग्र धरती का कागज बनाया जाए और सब जंगल की लकड़ी की कलम बनाई जाए और सात समुद्र की शाही बनाई जाए फिर भी हम हरिश्री हरि के गुणों का वर्णन पूरा नहीं कर सकेंगे परमानंद ठाकुर जो सिन्हा जी के अष्ट सखाओं में से एक है उन्होंने बताया है कि कृष्ण कथा बिनु कृष्ण नाम बिनु कृष्ण भक्ति बिनु दिवस जात ते प्राणी कहाँ को जीवत जो नाही वदत कृष्ण की बात अंत में श्री राधा गोविंद जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और बारंबार कथा सुनने का मौका दे ऐसी विनती करता हूँ
हरे कृष्ण महाराज मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करे और सब भक्तों को वंदन करता हो और चाहता हो कि भगवत प्राप्ति के लिए आप जैसा विश्वास और डिटर्मिनेशन मेरे मन में रहे महाराज की कथा सुनने के बाद हमें यही सीखना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन मौज मजा के लिए नहीं है ये भोग विलास और मौज मजा जीव जंतु भी करते हैं महाराज कथा में बोले थे मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मनुष्य को कथा करना चाहिए तो 24 घंटे भगवान का स्मरण करना चाहिए और मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए तो भगवान का कभी भी बोलना नहीं चाहिए ये गजेंद्र की कथा हम सबको ये बता रही है कि जीवन में हम जितना भगवान का स्मरण करें जप करें और भक्तों की सेवा करें तो ये सब कभी व्यर्थ जाता नहीं है अंधकाले जब हम मृत्यु की संज्ञा पे यमदूत का इंतजार करते हैं, तो भगवान की कृपा से भगवान का स्मरण आता है और हम भी गजेंद्र की तरह भगवान को पुकार सकते हैं। गजेंद्र के लिए जैसे भगवान दौड़ते दौड़ते आ गए थे, तो हमारे लिए क्यों नहीं आ सकते? जरूर भगवान आ सकते हैं। मगर जो हमारा सारा जीवन भोग विलास और इंद्रिय सुख में पसार करेंगे, तो अंतिम समय भगवान का स्मरण करना बहुत मुश्किल है। अज्ञान के कारण ये जीव रोते रोते ये शरीर छोड़ना पड़ता है और नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जो लोग के पास थोड़ी सी बुद्धि है, तो वो जरूर भगवान का स्मरण करेंगे, जप करेंगे, क्योंकि इसके अलावा ये संसार में और कुछ महत्वपूर्ण कार्य है ही नहीं। हम कितने जन्मों से भोगते और रोते रोते आ रहे हैं। अब हम सब लोग को एक और मौका मिला है, तो जरूर हमको सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। कान से भगवान की कथा सुननी चाहिए, आंख से भगवान का स्वरूप करना चाहिए, पैर से और हाथ से भगवान और भक्तों की सेवा करनी चाहिए। मैं महाराज व्रज भक्ति विलास प्रभु, राधा रमन प्रभु और सुनंदा दास प्रभु को नमस्कार करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि वे लोग अपना कीमती समय निकाल के हम सब के लिए यहाँ पर पधारे हैं, जिसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और आशा रखता हूँ कि अगले साल थोड़ा और ज्यादा वक्त निकाल कर हम पर यहाँ पधारे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। ये राधा गोविंद महाराज एंड ऑल असेंबल्ड वैष्णवस, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेशंसेस एंड ऑल ग्लोरी टू श्री प्रभुपाद। ओम अज्ञानाति निरंजनस्य ज्ञानांजन शलकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। फॉर लास्ट 8 days इट वॉज माई ग्रेट फॉर्च्यून टू रिलीज द टॉपिक्स ऑफ श्रीमद भागवतम, which were very nicely explained by His Holiness Radha Govind Maharaj. So I thank Maharaj from the bottom of my heart that he gave us this opportunity to hear this transcendental pastimes of the Lord and His devotees. Srimad Bhagavatam is a spotless Purana and its topics are most dear to the Vaishnavas. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. As it describes the pure and supreme knowledge of the Paramahansas, and it shows us the means of becoming free from the material work. Like most of our congregation proved that to hear sincerely Srimad Bhagavatam, they left their material work and came every day and hopefully derived great satisfaction and bliss to Shyanti Chairaman Teacher. The last 8 days we all heard on the topic of Gajendra Moksha. Gajendra, though being very powerful, lost the battle against the crocodile since he was situated in an unnatural condition, the water instead of the land. And being tightly in the grip of the crocodile, started losing his bodily strength and thus weakening his mind and senses. Similarly, if we are situated in our unnatural condition, then we'll also be caught by the grip of crocodile-like Maya and we'll lose all our strength. Srila Prabhupada mentions in the purport of Srimad Bhagavatam, 8th canto, 2nd chapter, 30th verse, that our Krishna consciousness movement has actually declared war against the illusory energy in which all the living entities are rotting in a false understanding of civilization. The soldiers in this movement must always possess physical strength, enthusiasm and sensual power. To keep themselves fit, they must therefore place themselves in a normal condition of life. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore recommended, Sthane Sthita Shuti Gatam Tanuvan Manobhi. One may stay in whichever ashram is suitable for him. Gajendra continued his fighting and finally, when his energy was all gone, somehow by his past sukriti, he remembered the Supreme Lord in total helplessness. In this material world, at each and every step, there is danger. And without the mercy of the Supreme Lord and His devotees, We are completely helpless. So at each step and every step, we must cry out for the mercy of the Supreme Lord and continue our devotional service with all vigor.
Hare Krishna.
आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं कृष्ण मोहन दास जी अपने पापा का प्रार्थना लेके महाराज जी के सामने उपस्थित हुई हूँ। ये उन्होंने वो उनको ये अवसर नहीं मिला कि वो यहाँ आके महाराज जी का सामने सुन सकते भागवतम का ये इतना सुंदर ज्ञान। तो उन्होंने मुझे अपने बड़े हाथों से हॉस्पिटल में बैठे बैठे लिख कर ये दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं कहीं भी कोई ऊपर ओवर राइटिंग भी ना करूं और ऐसा का ऐसा जाके महाराज जी के सामने पढ़ूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई कृष्ण मोहन दास डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी जी महाराज पे माई हम्बल ओबेसेंसेस एट हिज फीट। All glories to Srila Prabhupada and Lord Krishna. This Gajendra is tired of fighting Mahagraha and I am grateful to Guru Maharaj Ji who took mercy on my prayers and reciprocated immediately and blessed me and all the devotees, brothers and sisters with the nectar of Srimad Bhagavatam. All glories to the devotees being blessed with prema bhakti and mercifully relieved of the vicious circle of birth, death, disease and old age. Jai Shri Krishna. Hari Bol. Your servant ever, Krishna Mohan Das and family. Thoda sa, ye to papa ka prarthna tha Maharaj ji ke charan kamlon mein aur thoda sa main bolna chahti hu ki mujhe ऐसी परिस्थिति में जो घर में चल रही थी लेकिन फिर भी उस समय में इतना सुंदर महाराज जी की कृपा और इतनी गजेंद्र मोक्ष का जो सुनने को अवसर मिला है तो लग रहा है कि शायद भगवान जब कोई भगवान को कहें कि ऐसे परिस्थिति चल रही थी उस समय में ये भाग्य की बात हो गई मेरे लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये परिस्थिति में भूल गई हूँ और ये भाग्य मेरा उदय हो गया है और अब महाराज जी टोरंटो आ रहे हैं तो वहां भी मेरा भाग्य दोबारा उदय होने जा रहा है। थैंक यू महाराज जी। और महाराज जी की मुझे बहुत विशेषता ये लग रही है कि जब ये सुनाते हैं तो इतना बड़ा पुराण सुना रहे हैं लेकिन हम लोग जैसे वृंदावन प्रभु जी ने बोला कि हम गज के समान हैं भूल जाते हैं जाके बाहर फिर मिट्टी में लौटते हैं लेकिन महाराज जी ने इतनी छोटी छोटी घटनाएं यहाँ बताई कि वो हम अपने दैनिक जीवन में बिजी रहते हुए भी भूल नहीं सकेंगे। जैसे उन्होंने बोला कि तुम हमेशा पीट पीट करके बैठते हो हिंदी का 66 तुम 60 क्या बोलते हैं 63 क्यों नहीं बन जाते सामने रखो मुंह भगवान के और करो। तो महाराज जी मुझे बहुत अच्छा लगा और महाराज जी का ऑब्जर्वेशन तो इतना कीन है कि मैं दंग रह गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में वर्णन करूँ छोटी छोटी बातें यहाँ के लिए कि हम इतना अपने को ब्यूटिफाई करते हैं या रहते हैं। महाराज जी का ऑब्जर्वेशन इतना कीन है कि वो नेल्स एंड डॉग केयर और सब सुनाया है तो मुझे घर जाके सबको सुनाना है। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे
Thank you. हरे कृष्ण। परम पूज्य श्री श्री राधा गोविंद महाराज जी, आपके श्री चरण कमलों में मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री श्रीमद भागवत कथा की जय। जय श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय धाम वृंदावन वृंदावनम रम्या कचित उपासन ब्रज वधू वर्गिन या कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा प्रमार्थ महान। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रजेंद्र नंदन और श्री वृंदावन धाम ही समस्त जीवों का परम आराध्य है। समस्त आराधना में गोपियनों की आराधना श्रेष्ठ है और समस्त पुराणों में अमल विशुद्ध पुराण श्रीमद् भागवत पुराण है। महाराज, आपने अपने जीवन को भागवतमय बना दिया। कृष्ण कथा दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। कृष्ण कथा श्रवण से जीवों का सतह कल्याण होता है। महाभागवत के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के महान गुणों का श्रवण से कर्म बंधन छूटता है और हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है। संसार में अधिक संख्या तो सांसारिक भोगों में आसक्त मनुष्यों की ही है। इन भगवत विमुख मनुष्यों को कृष्ण सन्मुख कराने के लिए शुद्ध महात्मा भक्त संत जन विश्व में भ्रमण किया करते हैं और श्री कृष्ण की मधुर लीला चरित वर्णन करके उनके तापित प्राणों को शांति देते हैं। श्री नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। महात्मा संत अपने प्रभाव से तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं, अपने कर्मों को सुकर्म बनाते हैं और शास्त्र को सत्शास्त्र बना देते हैं। यानी वो जो कहते हैं वही सत वाक्य है। श्री भगवान के अपार करुणा से और परम सौभाग्य से हम आपसे भागवत कथा का श्रवण किए। आपने बारंबार कहा, श्री कृष्ण नाम रूप लीला गुणों का कीर्तन स्मरण करना ही मुख्य साधन है। कलयुग में इसके सिवा अन्य उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। अविद्या रूपी पित्त रोग से दूषित जीवा वाले व्यक्ति का तो श्री कृष्ण नाम लीला गुण आदि रूप मिश्री अच्छी नहीं लगती है, किंतु प्रतिदिन आदर पूर्वक उस कृष्ण नाम लीला गुण आदि रूप मिश्री का सेवन करते रहने से निश्चय ही वो क्रमशः स्वाद युक्त मधुर अनुभव होने लगती है तथा उस अविद्या रूपी पित्त रोग का मूल का नाश कर देती है। श्री कृष्ण के समान अपना परम सुहृद दयालु निस्वार्थ प्रेमी और कोई भी नहीं है। इतना होने पर भी अज्ञानी जीव उन्हें भुलाकर क्षण विनाशी विषय भोगों में लगा रहा है और अपने अमूल्य जीवन को धूल में मिला रहा है। आपने कहा, भोगों में आसक्त रहना एक दूषित चेतना का लक्षण है। जो बहुत उच्च कोटि के चेतना वाले हैं, वो सदा भगवान के चिंतन उनके गुणों का वर्णन आदि में ही सदा लगे रहते हैं। भगवान के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना और निष्काम भाव से उनकी सेवा करना ही शरणागति है। श्री कृष्ण के श्री चरणों में शरण ग्रहण करके जीव को जो सुख और आनंद प्राप्त होता है, वो किसी प्राकृतिक वस्तु के साथ तुल्य नहीं है। आत्मसमर्पण या शरणागति भक्ति के प्रधान अंग है। आत्मसमर्पण करके भक्त सर्वथा निश्चित हो जाता है। उसे अपने लौकिक अथवा पारलौकिक किसी प्रकार का भय या चिंता नहीं रहती, क्योंकि यही जीवों का स्वरूप भूत अवस्था है। जीव समष्टि चेतन परब्रह्म श्री कृष्ण का शुद्ध अंश है। जीवात्मा भी सचित और आनंदमय है। जब तक श्री कृष्ण की तत्व की श्री कृष्ण के महिमा की उपलब्धि नहीं है नहीं की हो जाती, तब तक अनंत कोटि जन्म के बीत जाने पर भी आवागमन रूप दुख से किसी उसका छुटकारा नहीं होता। भगवान ने श्री गीता में कहा है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम। ये सुख रहित और क्षणभंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर तू निरंतर मेरा भजन ही करे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में यही कृष्ण भजन पतित युवों को सिखाने के लिए आए हैं। कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण ही जाचत दान, कृष्ण नाम गुण तृष्ण अति गौर कृष्ण भगवान, कृष्ण नाम फल प्रेम गुणी प्रेम ही सेवा प्राण, प्रभु सब प्रेम जाचन लगे कृष्ण नाम गुणगान। और अंत में श्री चेतन महाप्रभु के शिष्टाष्टक अनुसार मैं कहती हूँ, हे कृष्ण हे ब्रजनायक, मुझे अपने चरण कमलों के धूलि समझ लीजिए और अपनी शरण में आया हुआ जानकर मुझे उबार लीजिए। मैं आपका नित्य दास हूँ और आपकी श्री चरण सेवा करना ही मेरा स्वरूपगत धर्म है। अतः हे कृष्ण हे मुरारी, आप मुझ पर ऐसा कृपा कब करेंगे कि मैं मन वचन और कर्म से आपके चरण कमलों के को नित्य सेवा करती रहूं और आपके चरण को त्याग कर कभी भी भवसागर में न पड़ूं। न हम विप्र न च नरपति न पि वैश्य न शूद्र न हम वर्णी न च गृहपति वनस्थ यदि वा किंतु प्रद्यन निखिल परमानंद पूर्णाब्धेर गोपीर भक्तुर पद कमलोर दास दास न दास। प्रेमी भक्तों के चरण रज अभिलाषी सावित्री देवी दासी। हरे कृष्ण। महाराज बात से प्रकट नहीं होती आपके प्रति जो हम इतने कृतज्ञ हैं। आपने मेरे माता पिता के ऊपर भी बहुत कृपा की है, एक कृपा की मैं कभी कोई जन्म में मैं उतार नहीं सकूंगी। हरे कृष्ण।
परम भगवदीय गोस्वामी श्री राधा गोविंद जी महाराज दंडवत, सब श्रोतागणों का हरे कृष्ण। हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी हम सबको सरल और शुद्ध भाषा में गजेंद्र मोक्ष की कथा और श्री कृष्ण का अद्भुत स्वरूप का वर्णन किया और साथ में सचोट दृष्टांत दिए। सचमुच ज्ञान कर्म और भक्ति का यह अनोखा त्रिवेणी संगम है। महाराज ने विश्वेश्वर की अद्भुत लीलाओं का जो तादृश वर्णन सुनाया वो हमें हर हमेश याद रहेगा। विधि का जो निर्माण होता है वो साक्षी भाव से कर्मों को पलट देता है। हम जिस भाव से प्रभु को भजेंगे उन सब की प्रभु लाज रखेंगे, यह हम सब ने कथा में सुना। भारत से इतने दूर आकर भारतीय भाषा में जो सचोट वर्णन किया उससे राष्ट्रभाषा के साथों साथ सम्मान बढ़ाया। इसी तरह हर साल आकर कलयुग की भावी प्रजा के ज्ञान भक्ति और संस्कार की धरोहर श्रीमद् भागवत का रसामृत हम सबको पिलाते रहे, ऐसी हम सब श्रोतागण की विनती है। जिस तरह ऋषिगण ऋषिकेश को पाने के लिए अहर्निश जाप जपते हैं, उसी तरह हम भी प्रभु के पाने के लिए मां मंत्र का जाप जपते हैं। हमारी यह प्रार्थना है कि हम भी संसार की सब माया को लपेट कर एक ध्यान से रटन करें। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 सब कुछ तू भुला दे, राधे 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 मोह माया मिटा दे, राधे 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 व्रज में तू भुला दे, राधे 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 चंद्रामृत पिला दे, हे हरे कृष्ण।
सभी भक्त जनों को मेरा प्रणाम। मैं तो गुजराती में लिख के आई हूँ लेकिन मैं कोशिश करूंगी। आपसे एक हफ्ता ये जो कथा सुनी हमने, श्रीमद् भागवत की कथा गजेंद्र मोक्ष की, वो सचमुच हमको लगा कि हम अमृत पी रहे थे जो स्वर्ग के अमृत से भी कहीं अधिक सुख देता है। और तो फिर भौतिक जगत के सुख की तो क्या बात करनी। और ये कथा हम बार बार पढ़ते हैं घर में भी, लेकिन समझ में भी इतना नहीं आता और इतना चिंतन भी नहीं होता जो आपसे सुन के हमको जो उसका पूरा समझ आया, गूढ़ अर्थ हम समझ सके। जब हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से, जब आप इतनी अच्छी शैली में इतना अच्छा समझाते हैं, तो उसका चिंतन भी होता है, और जब कथा का श्रवण करके उसका चिंतन करते हैं तब और आनंद होता है, और तब लगता है कि हमने कथा सुनी तो ऐसी कथा भगवान कब कृपा करेंगे कि हमको बार बार सुनने को मिलेगी। तो हम इतनी प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कथा रूपी अमृत का पान हमको हर साल कराते रहो, और आपको आने जाने में कोई कष्ट न हो, ऐसी हम प्रभु को प्रार्थना भी करते हैं। नमाम विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमती रोहपात स्वामी नामने। नमाम विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। सरस्वती वे गौरवाणी प्रचारे निश्चित जय श्री कृष्ण चेतन प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत तुलसीदास श्रीवास्तव गौरवंद। मेरा नमस्कार महाराज राधा गोविंददास को और सभी वैष्णवों को। ये 8 दिन की कथा सुने, हम भागे भागे दौड़ दौड़ के आए, इतनी मजा आई कि पूछना नहीं। मुझे ये गजेंद्र मोक्ष कथा में वो बहुत अच्छा लगा जो महाराज ने बोला कि गजेंद्र जब नहाए, गजेंद्र जब इतनी गर्मी से गए और अपने ऊपर पानी डाले और फिर अपने ट्रंक से बच्चे के ऊपर, सभी के ऊपर, ये क्या ग्रस्ता, वो मुझे बहुत अच्छा लगना। अब हम इतने मटेरियल वर्ल्ड में हैं कि पूछना नहीं, माया में इतने फंसे हैं बहुत, तो वी हैव टू बी डिटैच्ड। और प्रभुपाद ने ये जो इतना बड़ा मैप रखा है, जो कृष्ण कॉन्शियस, That is so so great. और महाराज जी वो मैप जब अपन लाइफ की जर्नी करते हैं, जब इतने डिटूर आते हैं, वो मैंने कल जाना जब 287 नॉर्थ इतने डिटूर दे रहे थे, ओह लॉर्ड, आई रियली ओपन द बुक बिकॉज यू नो आई वॉज ब्रिंगिंग समबडी एल्स, तो आई सेड उनकी कथा नहीं जाए, आई सेड आई विल रीड इट टू यू। तब जब भी लगा कि ये मैप प्रभुपाद ने रखा है और इतनी डिटूर लाइफ में जाते हैं एंड देन वो सही एग्जिट को पहुंचने को, ओ महाराज आप बार बार आया करो और हमें सही सही एग्जिट पे बचा, और बस जिस कृष्ण भक्ति बिना बस ये कामना कर।